अब आगे एक माशर्ती एटिकेट्स कुछ बताए जा रहे हैं। थोड़ी सी आयत 115 में भी के बारे में भी उलमा ने कहा है कि ये भी आयत जो है ना, ये भी उनके बारे में ही उतरी है। बास कहते हैं ये 115 तक की सारी ही उसी वाक्य के बारे में, क्योंकि यहाँ पे भी नजवा की भी बात आ रही है, जो लोग वो लोग नजवा भी करते थे, और फिर रसूल से कटने की भी बात अगली 115 में आ रही है, जो कि उसने की थी, जो तोमा था। तो ये देख लेते हैं, ला खैरा फी कसीर मिन नजवा, हम नहीं कोई भलाई, अक्सर जो सरगोशियां होती हैं उनमें, नजवा कहते हैं सरगोशी को, ये जो आप कानों में बातें करते हैं ना सीक्रेटली, जो इस तरह चुपके चुपके बातें करना, ये उसको कहते हैं नजवा। तो अक्सर जो नजवा होती है वो उसमें कोई भलाई नहीं होती, उसमें कोई खैर की बात नहीं होती, उसमें जरूर किसी की या तो गिबतें होती हैं, या किसी के बारे में प्लानिंग करना, या किसी के को बारे में कोई गलत बात करना, वही होती है जो हम कानों में जाके करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उसमें कोई खैर नहीं। जो मोमिन होता है वो खैर की तरफ तेजी करता है ना, जिस चीज में खैर नहीं होती उससे तो बचता है ना। तो एक तरह से सिखा दिया गया कि ये नहीं करना, ये नजवा ना करो, मगर हाँ, इल्ला मगर मन आमर अभी सदकतन, वो नजवा कर सकता है। वैसे नजवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सरियत इसके अंदर ऐसी ही बेकार बातें होती हैं। किसी का मजाक उड़ाना है तो उसके करीब जाके ना, तो उसको कहा, उसको देखा फलानी को, जरा उसके कपड़ों की तरफ तो देखो, क्या करके क्या पहन के आई है, अब ये नजवा है, अब उसमें आपने क्या किया, सिवाय जो हुक्म दे सदके का, यानी वो फिर कर सकता है नजवा, क्योंकि वो किसी को जाकर कहे मसलन कि फलां बंदा जो है उसको वो जरूरतमंद है, तो अब आप उसका पोल नहीं खोलना चाहते, सारी मजलिस में नहीं बताना चाहते किस बंदे की बात हो रही, तो आपने नजवा की, तो सदका के लिए नजवा कर सकते हैं, या उसको फलाने को देना है, या कुछ ऐसी बात सदके की, औ मारूफ है, या किसी भी नेकी की बात, मारूफ में सारी नेकियां आ जाती हैं, जो भी नेकी के काम है उनकी, किसी की आपने की, कोई भलाई की कोई बात थी, लेकिन अब आप सबके सामने नहीं करना चाह रहे, औ इस्लाह बैन नास, या लोगों के दरमियान सुलह कराने की कोई बात थी, तो फिर आप उसके बारे में नजवा कर सकते हैं। इस तरह और नजवा इस तरह की भी हो सकती है जो जायज के अंदर आती है। मिसाल के तौर पे दो लोग हैं, अब मेरे पास कई दफा लोग आते हैं, अब वो सारी मजलिस में तो अपना मसला लेके नहीं बैठ सकते, तो वो करीब आके करीब होके बैठ के बात करते हैं, वो भी सबको भी पता होता है कि ये हमारी कोई बातें नहीं हो रही, ये अपना ही कोई मसला डिस्कस कर रही है, तो वो एक अलग बात है। अगर अदरवाइज ऐसे ही इसको एक ये एक मैनर्स के, जो मजलिस के आदाब है उसके खिलाफ बात है, कि मसलन दो लोग अकेले होके बैठ गए, अब वो जनाब बातें कर रहे हैं, बाकियों को छोड़ा हुआ, ये वैसे भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, ये वैसे भी एटिकेट्स के खिलाफ लगता है। और ये तो उससे भी ज्यादा बुरी बात है कि अगर तीन लोग बैठे हैं और दो लोग नजवा शुरू करते हैं और उसको लेफ्ट आउट कर दिया, जब भी आप किसी को लेफ्ट आउट करेंगे, या 10 लोग बैठे हुए, 9 लोग तो बातें कर रहे हैं और उस एक बेचारे को इस तरफ देख ही नहीं रहे कि वो भी कोई है यहाँ पे मौजूद। और ये नजवा जो करते थे ना, असल में मुनाफिकीन किया करते थे, खुफिया मशवरे, और उनकी बातों में होता ही क्या था, उनकी बातें होती ही इस चीज के ऊपर थी कि वो किसी मोमिन की बुराई कर रहे होते, देखो इनको जरा, ये देखो क्या कह रहे हैं, ये देखो ये। तो इस चीज से अल्लाह ताला ने मना फरमाया। जो शरा करने वाले हैं ना मुफसरीन, वो कहते हैं कि इस किसी भी तरह में किसी को सिंगल आउट जो कर देना होता है ना, वो ना करें, कि वो बेचारा अकेला ही बैठा हुआ, और चाहे आप उसको नहीं भी जानते, उसको इन्वॉल्व कर लें, अब आपकी मजलिस में वो बैठा हुआ है, आप इसको इन्वॉल्व कर लें किसी तरह, लेकिन अब ये करना कि उसको छोड़ दिया, नहीं हम तो इसको जानते नहीं, जब वो आपकी मजलिस में बैठा तो आप दो लोग मिलके ना बातें करें। अल्लाह ताला ने सूरह मुजादला में नजवा पे बहुत बात आई है, 28वां पारा, अल्लाह जिंदगी रखे खैर रखे, तो हम इंशाअल्लाह ताला वो पढ़ेंगे। तो 28वें पारे में अल्लाह ताला ने मोमिनों को कहा है कि तुम जब सरगोशी करो, नजवा करो, तो ये नजवा जो है गुनाह और जुल्म और पैगंबर की नाफरमानी की ना हो, बल्कि नेकी और परहेजगारी की बातों पर सरगोशी करो, और अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सबको जमा होना है, ठीक है। तो और उसमें वहां पे ये भी कहा गया कि इन्नमन नजवा मिनश शैतान, नजवा जो है ना शैतान की तरफ से होती है, यानी शैतानी काम है, जिसमें क्या होता है, लियहज़ुन अल्लदीना आमन, जाके वो गमगीन करे ईमान वालों, क्योंकि ईमान वाले देख के कहेंगे ये देखो हमारी ही कोई बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये काम मैंने बताया जैसे कि उनका ही होता था, वो ये इस किस्म की चीजें करते थे, मगर आज भी हमारे लिए इस चीज से मना किया गया है कि हम ऐसे काम करें, क्योंकि खाम खा दूसरा का दिल बदजन होता है कि देखो ये तो बड़ी आपस में दोस्त हैं, इनकी कितनी बनती है, ये खुद ही लगी हुई है, मुझे तो मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रही, तो वो फिर उसका दिल तो खट्टा हो गया ना, इसलिए नजवा करने से मना किया गया, क्योंकि आपस के ताल्लुकात इससे खराब होते हैं और अल्लाह ताला नहीं चाहता कि मोमिनों के आपस के ताल्लुकात खराब हो। तो नजवा किसकी की जा सकती है, सदके की, मारूफ की, या इस्लाम बैन नास। इस्लाम बैन नास जो है ना, इस्लाम बैन नास इतना बड़ा नेकी का काम है, सुलह सफाई कराना इतना बड़ा नेकी का काम है कि इसके लिए तो इंसान को अगर झूठ भी बोलना पड़े तो वो झूठों में शुमार नहीं होता, पता है आपको, वो झूठों में शुमार नहीं होता, क्यों, इसलिए क्योंकि ये इतनी बड़ी नेकी है, सुलह कराना इतनी बड़ी नेकी, दो लोगों के दिलों में अगर कोई मैल आ गया उसको दूर करना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताऊं जो रोजा, नमाज और सदके से भी ज्यादा अफजल है। कैन यू इमेजिन, रोजे से नमाज, हम रोजों को ही बहुत बड़ी चीज समझते हैं, नमाजों को सदका कर लिया मैंने बहुत, लेकिन आपको पता है इससे भी बड़ा कोई अमल है जो इससे भी ज्यादा अफजल है, और हमेशा हमें हरीस होना चाहिए। पता है सारे जो नेकियां ना, ठीक है नेकियां सारी हैं, नमाज भी नेकी, रोजा भी नेकी, सदका भी नेकी, ये सब नेकियां, लेकिन आपको पता है कि हर नेकी एक लेवल की नहीं है, कईयों के तो सवाब इतने ऊंचे हैं, कईयों के उससे कम है, कईयों के उससे कम है, इस तरह से करके, यानी हम सारों को बराबर समझ लेते हैं ना, ऐसे नहीं है, सबका अपना अपना वेट होगा कयामत के दिन, अब तराजू में जब तुलेंगी ना सबके वेट देखे जाएंगे ना, तो हर एक का वेट अलग है, तो आपका दिल क्या करना चाहिए फिर, कि वो वाली नेकी करो जिसका वेट सबसे ज्यादा हो, अब वो ही आपके पास 1 घंटा है, उसमें आप ये नेकी भी कर सकते हैं, वो भी वो भी, अब आपको जब नॉलेज होगा, इल्म होगा, तो पता होगा ना कि नहीं भाई इस नेकी का वजन ज्यादा है, मुझे ये करनी चाहिए इस वक्त, इस वाली का कम है, ठीक है। अब यहां पे ये मतलब नहीं कि नमाज छोड़ के जाके लोगों की सुलह कराने शुरू कर दे, मतलब ये नफली नमाज की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब उससे अफजल कौन सा अमल है, लोगों ने कहा हमें तो बताएं कि कौन सा अमल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आपस में सुलह कराना है, आपस में सुलह कराना इतनी बड़ी नेकी है कि नफली रोजे, नफली नमाजे, नफली सदके से भी ज्यादा अफजल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और आपस का फसाद नेकियों को मूंड देने वाला है, मूंड देने वाला, मूंड देने का मतलब है जैसे शेव करना होता है ना, शेव करना, शेव करते तो एक बाल भी नहीं रहता, सिर्फ कटिंग करते हैं तो थोड़े थोड़े बाल रहते हैं, शेव करने वाला है, ये आपस का फसाद नेकियों को ऐसे खत्म कर देता है कि लोग एक मूड बना के इधर बैठे हुए हैं, वो मूड बना के इधर बैठे हुए हैं, उनको उसको वो नहीं पसंद है, वो उससे नहीं बात करना चाहती, वो उससे साथ मिलके नहीं बैठना चाहती, तो फिर आपस में जब मुसलमानों में इस तरह होता है ना, तो नेकियां तो बस खत्म ही हो जाती हैं, अब सोचे कितनी खतरनाक बात है। और बाजार में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू अयूब से, आ मैं तुझे एक ऐसी तिजारत बताऊं, लोग जब लड़ झगड़ रहे हो तो उनमें सुलह करा दे, जब एक दूसरे से रंजीदा हो तो उनको मिला दे, ये भी एक तिजारत है जिसमें नफा ही नफा, समझ आई, कि आपस में उनके दिल एक दूसरे से खट्टे हो गए हैं, दिल एक दूसरे की तरफ यानी खराब हुए हैं दिल एक दूसरे से, तो चलो चाहे लड़ाई नहीं भी हुई लेकिन दिल खराब है, तो आप उनके दिल मिलाने की कोशिश करें ना, कि जलती पे हम तो तेल डालते हैं, मियां बीवी की लड़ाई हुई है, हाँ वो तो ऐसी ही है वाकई, आदमी को उसके दोस्त कहेंगे कि वो तो वाकई वाकई तुम्हारी बीवी इसी तरह की है, और औरत को जाके कहेंगी उसकी सहेलियां, हाँ तुम्हारा मियां तो वाकई तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, बाकी मैंने तो खुद नोटिस किया है। तो बजाय ताल्लुकात को हम सही कराने के ना, हम भी अंदर एक तीली लगा देते हैं, तीली तीली लगाने से वो आग और भड़कती है। शौहर को कह देंगे तुम तो वैसे ही इतने बीवी के नीचे लगे हुए जन मुरीद हो तुम, ताकि वो अब जाके कहे कि नहीं मैं तो जन मुरीद नहीं हूं, तो वो तो जाके फिर लड़ाई करे घर में। और अक्सर ये तो क्योंकि मैं तो ये चीजें डील करती रहती हूँ, ये मियाँ बीवी के जो झगड़े होते हैं, बहुत दफा मैंने देखा है कि जो आप इधर आप इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो फ्यूल करते हैं, तेल डालते हैं, वो बुझाने की नहीं कोशिश करते आग को, और तेल डालते हैं ताकि आग और भड़के, सुलह नहीं कराने की कोशिश करते। अब मियाँ बीवी में लड़ाई हो, कितने बड़ी ये नेकी है उनमें सुलह करा देना, सुलह सफाई कराना, जो दोस्त है बाबू वो भी उसमें चाहे झूठ भी बोलना पड़े, वहां पे हम कहते नहीं यहाँ पे तो मैंने सच्ची बोलना है, मैं इतनी सच्ची हूँ, झूठ तो मैंने कभी बोला नहीं, यहाँ पे कैसे झूठ बोलूं, वहां पे तो खोल खोल के बताएंगे, वो आए थे हमारे घर, उन्होंने तो तुम्हारे बारे में ये कहा था, तभी वो, और अगर उसने दोस्ती करनी भी थी तो अब ना करें। तो सुलह सफाई सिर्फ बाकियों में नहीं, सबसे बड़ी तो बात यह है कि मियां बीवी में सुलह सफाई कराई जाए। इसके अंदर मैंने आपको जैसे कहा औरत को भी सुलह करनी है तो वो अपने शौहर को कह सकती है, ये कोई झूठ नहीं, अगर वो नहीं भी है तो कहने में कोई हर्ज नहीं है, कि अगर वो कह दे आप बेस्ट हस्बैंड हैं, आपसे ज्यादा कोई हस्बैंड अच्छा नहीं, आदमी आया उसने देखा कि खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं आज इसने बनाया, अगर वो कह देता है कि नहीं बहुत अच्छा खाना बनाया तुम्हारे हाथ में, इतना टेस्ट है मजा आ गया, तो क्या फर्क पड़ेगा इसे, उसका दिल अच्छा हो जाएगा, वो और मोहब्बत करने लगेगी, तो इसमें ये झूठ नहीं होता, ठीक है। इसी तरह आप किसी के पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि अच्छा आप उसके बारे में ऐसे सोच रही हैं, वैसे उसको तो मैंने देखा वो तो आपकी इतनी हमेशा तारीफ करती है, हमेशा वो तो आपके लिए, वो तो कह रही थी मैंने आपको अपनी दावत पे भी बुलाना है, तो अब चाहे उसने ऐसा नहीं भी किया हो, आपने ऐसा कह दिया ताकि दोनों की सुलह हो जाए, इसके ऊपर आप नजवा भी कर सकते, इसके ऊपर आपने अगर कोई खिलाफे वाकया भी बात कह दी है तो कोई हर्ज नहीं है कि उनके दिल मिल जाए। और ऐसी बातों में ना तो हम नजवा करते हैं ना तो हम झूठ को तो सख्त गुनाह समझते हैं ऐसी जगह पे, तो हम देखें कि कहाँ हम कहीं हम भी तो उनमें शामिल नहीं है जो जलती पे तेल डालने वाले हो, जो भड़काते हैं झगड़ों को, बढ़ाते हैं झगड़ों को, बजाय इसके कि उनको पुट ऑफ करना उस आग को। वमई अफअल ज़ालिका, और जो कोई करेगा ये, क्या ये, क्या ये ज़ालिका, ये क्या, ये जो पिछले काम है जो बताए गए हैं, सदका और नेकी का हुक्म देना, इसलाह का काम करना, चाहे इसके लिए नजवा करेगा, ये काम करेगा किस लिए, इब्तिगा मर्दात इल्ला, उसका कोई अपना इन पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट अल्लाह को राजी करने के लिए, इसलिए कि अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, सदका कर रहा है या कोई भी नेकी का काम कर रहा है, लोगों के दरमियान इसलाह करा रहा है, कोई नई नई दोस्तियां करा रहा है लोगों की, लोगों के चाह रहा है कि आपस में मिल के रहे, वो कहते हैं ये अगर आपस में मिलकर रहे तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, हमारी तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, तो अच्छा है लड़े रहे वो, फिर हमारे पास आके रोते रहे, तो हमारे पास आके रोने का तो हमारी एक अहमियत होती है ना, तो अगर ये ही खुद मिल के बैठ गए तो मुझे कौन पूछेगा, फिर तो लड़ाई कराते ही रहो इनकी, लड़े ही रहे तो अच्छा है। तो नहीं, जो ये काम करेगा सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की रजा उसको चाहिए, इन्होंने तो उसको कोई इनाम नहीं दे देना, जो दोस्ती उनकी हो भी गई तो हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलना, लेकिन वो सिर्फ कहता है कि मैं अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, फसौफ नुती ही अजरन अजीमा, तो अल्लाह ताला फरमाता है हम तो अनकरीब उनको देंगे बहुत बड़ा अजर, तुम इससे ना सोचो कि मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, मैंने सदका करके क्या करना है, मैंने ये नेकी का काम करके क्या करना है, मैंने लोगों की इसलाह करके ठेका लिया हुआ है, हमने लोगों की इसलाह कराने का, हम तो ये सोचते ना अरे भी हमें क्या, तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी नबेड़, तू छोड़ो भाई, लोगों के तो इस तरह होते रहते हैं, हमें क्या जरूरत है अपना टाइम वेस्ट करने की इनके पीछे, हमें क्या जरूरत है कि हम अपने, हम क्यों बुरे बने, हम क्यों जाके दोस्तियां कराएं, हमारा कोई काम है, हमारी कोई जिम्मा है, खुद ही करते रहेंगे, नहीं तुम्हें पता नहीं है अगर तुम अल्लाह की खातिर उसको राजी करने के लिए करोगे ना तो तुम्हें अजरे अजीम मिलेगा। तो हमें क्या होना चाहिए, डव होना चाहिए, जो कि पीस मेकर है, जो दोस्तियां कराता है, ना कि झगड़े कराने वाले हूं, ना कि लगाइयां बुझाइयां करने वाली, फोन किया इधर उसको ये बताया, उसको उधर बताया, तुम्हें पता है इस तरह हुआ इस तरह हुआ, इधर टेक्स्ट किया उधर वो किया, इधर की लगाई बुझाई, उधर की उधर, उधर की इधर बात, ये एक सारे झगड़े करने वाली चीजें हैं, ये फसाद करने वाली चीजें हैं, ये लोगों को जोड़ने वाली नहीं है। तो हमने ये लोगों को दिलों को जोड़ने वाला बनना है, ठीक है। वमन युशाकिक रसूला, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कोई मुखालफत करेगा रसूल की, किस चीज में मुखालफत, इस चीज में नहीं कि रसूल की जात की क्या मुखालफत करनी, वो तो काफरों ने भी नहीं की थी, खुद भी उनको सादिक और अमीन ही कहते थे, वो जो पैगाम लेकर आए हैं ना, जो वो सुनाते हैं, जो वो वही बताते हैं, उसकी मुखालफत करना, जो उनकी रिसालत है उसकी मुखालफत करना, जो वो वे ऑफ लाइफ बताते हैं उसकी मुखालफत करना, जो वो करने को कहते हैं उसकी मुखालफत करना, जिससे रोकते हैं उसके ऊपर चढ़ना कि भाई हमने ये करना है। जो कोई मुखालफत करेगा रसूल की, शक होगा, यानी अपना अलग ही उसने रास्ता बना लिया, रसूल का रास्ता अलग है, वो शक होके फट के दूसरी तरफ चला गया, कट गया, मिम बादी मा तबय्यन लहुल हुदा, इसके बाद की हिदायत तो उसके सामने वाजे हो गई थी, उसको पता है कि सही रास्ता कौन सा है, रहनुमाई आ गई थी उसके पास। वयत्तबि गैरा सबीलिल मोमिनीना, और वो पैरवी करेगा उस रास्ते की जो मोमिनों के रास्ते के अलावा है, यानी जो सहाबा कराम का रास्ता है उसके अलावा रास्ते की, या जो उम्मत के उलमा हैं उनका जिस चीज पे इजमा है, मिसाल के तौर पे सारी उम्मत के उलमा का इजमा है इस बात पे, नमाज पढ़नी है, नमाज के ये अरकान हैं, नमाज वुजू ऐसे है, हज है, बेसिक्स के ऊपर सबका इजमा है सबका। अब वो क्या करता है, उसके अलावा ही कोई और रास्ता पकड़ लेता है, तो क्या होगा? या पहले तो ये समझें कि ये होता कैसे। देखिए ये भी एक खतरनाक बात है जो कि आज भी शुरू हुई भी है कि और बढ़ती ही जा रही है, कि हम तो जी हदीस को नहीं मानेंगे, तो जो हदीस को ना मानना है वो क्या है, कट जाना रसूल से, वो जो पैगाम लाए हैं उसको कहना कि हमने मानना ही नहीं, रसूल की मुखालफत ये है ये। जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाता है, मा आताकुम रसूलु फहुदू व मा नहाकुम अनहु फंतहू, जो तुम्हें रसूल दे वो लो, जिसे रोके उसे रुक जाओ, इसने अपना अलग ही रास्ता बना लिया, क्योंकि अब ये करना नहीं ना चाहते, तो इसलिए हदीस को ही रिजेक्ट कर देते हैं। आप कहते हैं हम हदीस सिर्फ वही मानेंगे जो कि हमारी अकल के मुताबिक है, तो भाई अकल के मुताबिक तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप सरासर मेराज पे गए थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक कहलाए क्यों, कि उन्होंने क्या फरमाया था, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ना कि मैं हो के आया हूं आसमानों पे और ये देख के आया हूं, तो बस मैंने तस्दीक कर दी, तभी तो वो सिद्दीक कहलाए। आप कहते हैं मैं अपनी अकल के ऊपर पहले रखूंगा, जो हदीस अकल पे नहीं लगती मैंने माननी नहीं, भाई ये क्या बात हुई। वो लोग मुखालफत कर रहे हैं रसूल की, और इसके बाद की हिदायत उनके सामने आ गई। अब एक उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो तोमा था, वो जो आदमी था, उसने रसूल की हिदायत उसके सामने आ गई थी, लेकिन उसने क्या किया, वो चला गया, जब उसके ऊपर उसके बारे में कुरान में ये आयतें उतरी ना, तोमा बिन बैरिक बशीर जिसका नाम था, तो उसने सोचा कि मेरी तो बड़ी रुसवाई है, वो भाग के मक्का चला गया, मुशरिकीन से जाके मिल गया, ठीक है। तो तब ये आयत नाजिल हुई कि जिसने शक किया अपना रास्ता अलग कर दिया, इसके बाद की हिदायत भी उसके पास आ गई थी। और ये भी कहा जाता है कि वहां पे जाके ये एक आदमी के घर पे ठहरा और उसके घर में भी चोरी की कोशिश की, चोर जो था तो उसके उसने यही करना था वहां पे भी, तो जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने उसको पकड़ लिया उसको, और उन्होंने कहा कि हम इसको संसार कर देंगे, लेकिन जो घर वाला था उसको हया आई, उसने कहा ये मेरा मेहमान था, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, तो ये वहां से निकल के चला गया, एक और कबीले में चला गया, वहां पे जाके बुतों की पूजा इसने शुरू कर दी। बाद रिवायत में आता है कि ताजरों के साथ निकल गया और वहां उनकी कोई चीज चुराई तो उन्होंने उसको संसार कर दिया। बाद में आता है कि एक कश्ती में सवार हुआ, वहां पे माल चुराया, उन्होंने उसको समंदर में फेंक दिया। बाद कहते हैं इसको इसके ऊपर दीवार गिर गई, एक जगह पे गया, बाहर क्या वो हलाक हुआ इसी चीज के अंदर, अब उसने वो मुर्तद हो गया यानी चला गया, उसने मोमिनों के रास्ते से अलग रास्ता निकाल लिया। और ये आयत उस कॉन्टेक्स्ट में तो आपने समझ ली, लेकिन अमूमी माना जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जो भी रसूल के रास्ते से अलग रास्ता निकाल लेता है, जबकि वासी हैं खुदा के लिए वो लोग जो हदीस के ऊपर तान करती हैं, उसको ताने देती हैं, उसको अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं इसके ऊपर, खुदा के लिए वो एक दफा साइंसेस ऑफ हदीस जरूर पढ़ लें, एक दफा जरूर पढ़ लें उलूमुल हदीस का सब्जेक्ट, तो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि यह हदीस कैसे हम तक पहुंची है। इसके अलावा भी जो भी अपना रास्ता अलग कर ले रसूल के रास्ते से, मैं नहीं मानता इसको, मैं नहीं रसूल की बात को मानता हूं, मैंने तो अपना लॉजिक है। आजकल जैसे हर एक ने अपनी एक लॉजिक बनाई हुई है, अपना माइंडसेट बनाया हुआ, वो अपने ही मुताबिक दीन को जी समझ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया वो नहीं उनको समझना, हर एक ने अपना अपना तरीका बनाया हुआ। और जो उम्मत का इजमा है, जिन बातों पे इजमाए उम्मत क्या होता है, जिसके बस सारे सब उम्मत के उलमा एक चीज के ऊपर मुत्तफिक है, वो उससे निकल जाता है, उसको भी नहीं मानता। इजमाए उम्मत की ये दलील है यहाँ पे। जिनको समझ आती है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आती तो कोई मसला नहीं है, कि यहाँ ये जो फिक है ना, फिक भी वो उसका एक उसके मसादर में से एक मसदर है इजमाए उम्मत, ठीक है। ये फिक भी कुरान से ली जाती है, फिर हदीस से ली जाती है, फिर उसके बाद इजमाए उम्मत। तो इमाम शाफी से जब पूछा गया था कि कुरान पाक की कौन सी आयत है जो इजमा पे हुज्जत है, यानी दलालत करती है कि इजमा भी एक हुज्जत है, जब सारे उलमा एक चीज पे मुत्तफिक हो जाएं तो वो भी एक हुज्जत है, तो उन्होंने कुरान पाक को 300 दफा पढ़ा था, तो फिर उन्होंने कहा था मैंने इस आयत को इजमा के लिए हुज्जत उन्हें पे दलील पाया। और इस पे सब के वाकई अगर सारी उम्मत के उलमा एक चीज के ऊपर मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर वो चीज भी दलील बन जाती है, उसके मुताबिक भी कोई चीज अगर कोई गलत, वो कहते हैं कि ये गलत है ये, और ये कोई वो नया मसला नहीं निकालेंगे, कुरान और हदीस से ही निकालेंगे, तो वो लेकिन वो इससे इत्तेफाक करते हैं और कुरान और हदीस की दलील के मुताबिक इत्तेफाक करते हैं, उनका कंसेंसस हो जाता है इस चीज के ऊपर, तो फिर वो भी चीज को मानना जरूरी है, वो भी हुज्जत बन जाती है। तो लेकिन ऐसे ही नहीं कह देना चाहिए उठ के कि जी इसके ऊपर इजमाए उम्मत है, ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो ये करेगा ना, नुवल्लीही मा तवल्ला, हम उसको फेर देंगे उसी तरफ जिस तरफ वो जाना चाहता है। जो रसूल के रास्ते को छोड़ेगा तो फिर वो गुमराही के रास्ते पे ही होगा, फिर ठीक है हम भी उसको भटकने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत खतरनाक बात है, यानी रसूल के रास्ते को छोड़ना, फिर जिस तरफ रुख करोगे ना अल्लाह भी फिर वही रास्ते खोलता चला जाएगा, उसी को आसान कर देगा, फिर जाओ तुम भी चले जाओ उस रास्ते के ऊपर, फिर वो बंदा भी फिर शैतान के पीछे ही लगता है। और आज पूरी उम्मत का हाल ऐसा ही है कि रसूल के रास्ते को छोड़ के वो निजामे जिंदगी जो रसूल ने दिया, वो फरामीन जो रसूल के थे उनको भुला के उन चीजों को एक तरफ डाला और अपनी अपनी मंतके सबने निकाल ली। उन्होंने कहा ये मॉडर्न होने के लिए तो इन लोगों के रास्ते पे चलना है, हमें थोड़ी रसूल का रास्ता चाहिए, वो कोई और ही रास्ते निकाल के बैठ गए। तो यहाँ पे दो जुर्म है ना, एक रसूल के रास्ते की मुखालफत करना, आपके सामने हदीस आ गई है आप कहते हैं हम तो नहीं मानते इसको, और बल्कि करने वालों को भी रोकते हैं, उनसे भी नाराज होते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो। और दूसरा सबीलुल मोमिनीन को छोड़ना, सबीलुल मोमिनीन है सहाबा का रास्ता, जो बड़े उलमा उनका रास्ता है, जो इजमाए उम्मत है वो रास्ता, उसको छोड़ के अपना ही रास्ता अपनाना, तो फिर जाओ फिर तो गुमराही है ना, फिर और कुछ नहीं। वनुस्ली ही जहन्नम, फिर हम उसको जहन्नम में ही डालेंगे। देखिए रास्ता देख के ना फिर मुखालफत करना, ये यानी आपको नजर आ गया, आपको पता है कि ये हक रास्ता है, फिर भी उस रास्ते को छोड़ देना। आज सब मुसलमानों को पता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, आपकी रिसालत को मानते हैं, फिर भी अपने अलग राहें बनाई हैं, ये छोटी बात नहीं है, जबकि कुरान सारा कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का आपने पढ़ा भी है, मैं यूती है रसूल फकद आता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने असल में अल्लाह की इताअत की। कुल इन कुंतुम तुहिबून अल्लाह फत्तबियूनी युहिबकुम अल्लाह, तुमसे मोहब्बत तब करेगा तुम रसूल का इत्तेबा करो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमरी मिनकुम, ये पहले पढ़ा है आपने। तो अल्लाह ताला ने तो तबयन और रुश्द मिनल गई, अल्लाह ने तो रास्ता साफ वाजे कर दिया है कि हिदायत का रास्ता ये, गुमराही का रास्ता ये। अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया वमा यंतिकु अनिल हवा, तुम क्या कहते हो, मेरा रसूल अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, जो मर्जी बोलता रहे, इन हुआ इल्ला वही हुआ, ये वो ही है जो वही की है अल्लाह ताला ने। फिर सही हदीस होने के बावजूद, कुरान होने के बावजूद इसको बाईपास कर देना। इब्ने उमर सोचे सहाबा कितने इस चीज के अंदर इसमें फर्म थे ना। इब्ने उमर के पास कोई बंदा आया, उसने आके कहा अब्दुल्ला बिन उमर के पास, कहता है हज तमत्तो के बारे में आप क्या कहते हैं। मैंने कहा कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तमत्तो का कहा है। उन्होंने कहा लेकिन शेख ऐन तो नहीं इसको मानते, अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर तो नहीं मानते। फरमाया मैं तुमको कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसको इसके बारे में फरमाया, और तुम कहते हो कि वो नहीं मानते, तुम कैसे कह सकते हो ये बात। यानी किसी और की से कोई माने नहीं रखती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इमाम मालिक फरमाते थे कि हम में से हर एक की बात को लिया भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है, इतने बड़े इमाम थे, सिवाय इस साहिबे कबर के, इन कबर वाले, क्योंकि मस्जिद नबी में दर्श देते थे ना, फरमाते सिवाय इस कबर वाले के, यानी इनकी बात को नहीं छोड़ा जा सकता। समझ आई बात। तो ये मामूली चीज नहीं है, ये अपने 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 हिसाब से हर कोई चलना शुरू कर दे, अपने हिसाब से दीन को मोड़ना शुरू कर दे। तो नुसली ही जहन्नम, हम उसको झोंकेंगे जहन्नम में, साअत मसीरा, और बुरा वो ठिकाना है, बुरी लौटने की जगह। चाहे अपने आप को कोई कहता रहे मैं मुसलमान हूं, लेकिन उसने रसूल की मुखालफत की भी है, और उसके ऊपर कमर बसता है, और नए नए शोशे निकालते हैं, नई नई बातें करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतनी खतरनाक चीज है, अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रखे, ये इतनी खतरनाक चीज है। इंसान जानते बूझते कि हिदायत का रास्ता अब वाजे हो चुका है, हिदायत खुली है, कुरान हमारे सामने है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया, जाने से पहले फरमा दिया मेरी उम्मत जो चीज तुम्हें जन्नत से करीब कर दे और जहन्नुम से दूर कर दे वो मैंने तुम्हें बता दी है, मैं बता चुका हूं सब चीजें, वाजे कर दी शरीयत, एक वाजे फरमाया, मैं तुम्हें एक वाजे साफ रोशन रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं, जिसकी रातें भी दिनों का मुकाबला करती है, यानी यहां पे अंधेरा नहीं है। मेरी उम्मत के लोगों, कयामत के दिन मुझे मेरे परवरदिगार के सामने शर्मिंदा ना करना। और आज क्या बना के रख दिया। इतनी तरह के फलसफे हैं, आप ये अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इन इन इंटरनेट के जो फितने हैं उनसे भी, तरह तरह की बोलियां, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई दीन के मामले में क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, ना कुछ अलिफ बे पता। कितना आपने पढ़ा है, आपको कितना पता है, बुखारी के ऊपर तान कर रहे हैं, मुस्लिम के ऊपर कर रहे हैं, हदीसों को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और इसको बहुत मामूली मामला समझते हैं। याद रखें अल्लाह रसूल की बात फाइनल है, अनकंडीशनल है, ये कंडीशंस के साथ नहीं होगी, अगर ये बात होगी मेरी अकल को पहुंचेगी तो फिर अनकंडीशनल। मेरे इमाम कुछ भी कह दे, मेरे पीर साहब कुछ भी कह दे, मेरे कोई भी बड़े कुछ भी कह दे, रसूल अल्लाह और रसूल की बात सबसे ऊपर ही रहेगी। हम ये नहीं कह सकते हमारे इमाम ने तो ये कहा, अगर हदीस ये कहती तो मैं क्या करूं, लेकिन हमारे इमाम तो ऐसे कहते हैं। नो, हदीस जो कह रही है हमने उस पे ही चलना। तो ये गुमराही के रास्ते ना बहुत सारे हैं, और एक दफा इंसान उन पे चल पड़े फिर अल्लाह ताला उसी के लिए वही रास्ता खुला छोड़ देता है। एक हदीस ने मुझे इतना डराती है, इतना डराती है, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। क्योंकि यानी सबसे ज्यादा मुझे जो डरा देने वाली हदीस वो लगती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी सारी जिंदगी नेकी के काम करता रहता है, हत्ता कि वो जन्नत से ना एक बालिश्त दूर रह जाता है। ये जो हैंड है ना, एक आप अपना हाथ खोले, एक बालिश्त दूर रह जाता है कि वो कोई ऐसा काम कर देता है कि वो जहन्नमी हो जाता है, अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेता है। तो चलते चलते कहीं पैर ना फिसल जाए, इस चीज की हमेशा फिक्र रखनी चाहिए। अब ये आदमी मुसलमान था, मुसलमान ही था ना, उन मुसलमानों में ही रहता था। क्या उसने देखें कितना बड़ा उल्टा काम किया और फिर उसके बाद भाग गया और मुर्तदी हो गया। चलो कोई चांस था यहाँ पे कि हो सकता था कि कभी पक्का मोमिन बन जाता अगर मुनाफिक भी था तो, लेकिन उसने अपने दरवाजे ही बंद कर दिए और उसी पे कुफर पे ही मौत आई उसको। तो हमेशा डरते ही रहना चाहिए, अल्लाह ताला से हमेशा खात्मा बिल खैर ही मांगते रहना चाहिए। और फिर ये भी फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक आदमी हमेशा गुनाह करता रहता है, वो एक बालिश्त दूर होता है जहन्नम से, कि वो ऐसे कोई काम कर देता है कि वो जन्नती हो जाता है। तो ना तो किसी को समझे, किसी को हकीर समझे, फलां ऐसे नहीं, हम नहीं जानते, हम अपना भी अंजाम कुछ नहीं जानते। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا